आर्थिक सुधारों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड माइग्रेशन बनेगा आसान। न्यू साउथ वेल्स में पूर्ण टीकाकरण दर पहुंची 92% के पार और न्यूजीलैंड और भारत के बीच सीरीज के पहले टेस्ट की शुरुआत आज। अब खबरें विस्तार से। आप्रवासन, नागरिकता, प्रवासी सेवा और बहुसांस्कृतिक मामलों के फेडरल मंत्री एलेक्स हॉक का कहना है कि सरकार देश की कोविड-19 से आर्थिक सुधार के हिस्से के रूप में स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहना और काम करना आसान बना रही है। उनका कहना है कि नए वीजा परिवर्तनों का उद्देश्य मौजूदा टेम्प्रेरी स्किल्ड शॉर्टेज सब क्लास 482 वीजा धारकों और लेगेसी टेम्प्रेरी वर्क स्किल्ड सब क्लास 457 वीजा धारक जो आयु की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं उनके लिए स्थायी निवास को आसान करना है। सरकार स्किल्ड रीजनल वीजा होल्डर्स सब क्लास 489, 491, 494 और विदेशों में नए विजिटर वीजा आवेदकों के लिए वीजा आवेदन शुल्क में छूट देगी जहां उनका वीजा समाप्त हो गया है या समाप्त होने वाला है। निर्दलीय सांसद एंड्रयू विल्की ने लिबरल सांसद ब्रिजिट आर्चर के फेडरल इंटीग्रिटी कमीशन बिल यानी कि राष्ट्रीय अखंडता विधेयक पर बहस के प्रस्ताव का समर्थन करने के फैसले को संसद के अपने 11 साल के इतिहास में सबसे बहादुर काम के तौर पर बताया और उन्हें एक हीरो कहा।
To cross the floor for the sake of integrity. She's a hero. There's one man standing in the road. One man, Scott Morrison. Stop being pig-headed. Swallow your pride and to let an integrity agency be debated and let's legislate it before Christmas.
ब्रिजिट आर्चर ने प्रस्ताव के समर्थन में लेबर और क्रॉस बेंचर के साथ मतदान किया जिसमें 66 सांसदों ने पक्ष में और 64 ने इसके खिलाफ वोट दिया, लेकिन इसके बावजूद प्रस्ताव विफल हो गया क्योंकि उसे 76 मतों के पूर्ण बहुमत की आवश्यकता थी।
We were prevented by an undemocratic technicality. The Prime Minister and the government are standing in the way now of not only the will of the people, but the will of the Parliament. This is an extraordinary moment, I think, in the history of the House of Representatives.
प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि उनकी सरकार का रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन बिल यानी कि धार्मिक भेदभाव बिल छात्रों या स्कूल के कर्मचारियों को उनकी सेक्सुअलिटी या लिंग के आधार पर अलग तरह से व्यवहार करने की अनुमति नहीं देगा। विवादास्पद कानून पहली बार 2017 के समलैंगिक विवाह सर्वेक्षण के मद्देनजर उठाया गया था और प्रधानमंत्री मॉरिसन ने आज सुबह फेडरल संसद में एक संशोधित मसौदा पेश किया। आपको बता दें कि इस चिंता के साथ कि धार्मिक स्कूल उनके साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं, गठबंधन पर समलैंगिक शिक्षकों और छात्रों की बेहतर सुरक्षा के लिए सेक्स भेदभाव अधिनियम को बदलने का दबाव बना हुआ है। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने संसद में बताया कि बिल धार्मिक स्कूलों को धार्मिक कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देगा और स्कूल समुदायों को निश्चितता देगा।
Nothing in this bill, I stress, Mr. Speaker, nothing in this bill allows for any form of discrimination against a student on the basis of their sexuality or gender identity. You won't find it. Anything of that nature in this bill. Such discrimination has no place in our education system.
अब बात करते हैं कोरोना संक्रमण की। विक्टोरिया में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1254 नए स्थानीय मामले और 5 मौतें दर्ज की गई हैं। आपको बता दें कि इस वक्त अस्पताल में 310 मरीजों के साथ विक्टोरिया में 10,276 सक्रिय कोविड मामले हैं। अगर बात करें टीकाकरण की तो 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के 90% लोग पूरी तरह से टीका पा चुके हैं। प्रीमियर डेनियल एंड्रयूज ने उन सभी विक्टोरियाई लोगों को धन्यवाद दिया जो कोरोना वायरस के खिलाफ टीका लगवा रहे हैं।
I would also say that with about 94% of people at least first dosed, we are well on track to get to that what has been described by some as that kind of magic 95% number. What that'll mean is that we are without any doubt one of the most vaccinated and therefore one of the safest places anywhere in the world.
बात करते हैं न्यू साउथ वेल्स की। न्यू साउथ वेल्स में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 276 मामले सामने आए हैं। वहीं राहत की खबर यह है कि इस दौरान किसी भी मरीज के मरने की जानकारी नहीं है। इस बीच बायरन बे में एक बैकपैकर छात्रावास को एक कोविड मामले की पहचान के बाद बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक्वेरिस बैकपैकर्स को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और हॉस्टल के 84 करीबी संपर्क हैं। इस बीच सरकारी कैबिनेट उप समिति आज इस बात पर चर्चा करेगी कि मास्क नियमों में ढील दी जाए या उन्हें 15 दिसंबर की निर्धारित तिथि से आगे बनाए रखा जाए। अब खबरें भारत से। कोविड के चलते केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मार्च 2022 तक मंजूरी देने के लिए कैबिनेट की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सुनिश्चित किया है कि हर किसी को पर्याप्त भोजन मिले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ भारतवासियों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में और ये फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत जो अनाज देते हैं ये इसके ऊपर है। तो एक प्रकार से दो दो योजनाएं साथ में चला के पूरे कोविड महामारी में हर गरीब की हर व्यक्ति की चिंता की और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने देना, 19 महीने 2,60,000 करोड़ रुपए का खर्चा करना केंद्रीय सरकार द्वारा, जिसके तहत 760 लाख टन्स अनाज मुफ्त में बांटा गया, ये विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा का प्रोग्राम है जिसका पूरे विश्व में सराहना हो रही है।
नई दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रियों का दबाव घटाने के लिए केंद्र सरकार ने ग्रेटर नोएडा में एयरपोर्ट बनाने की योजना बनाई और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा।
यह एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जहां करीब करीब 34,000 करोड़ रुपए का निवेश जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में किया जा रहा है। और यह हवाई अड्डा, मैं आपके द्वारा दर्शकों को भी सूचित करूं, ये भारत का सबसे बड़ा नहीं लेकिन एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। चौथे फेज में यह हवाई अड्डा 7 से 7.5 करोड़ यात्रियों के आवागमन के लिए एक सुविधा का सूत्रधार बनेगा। और इसके साथ केवल आप हवाई अड्डे को हवाई अड्डे के रूप में मत देखिए, हवाई अड्डे के साथ आर्थिक प्रगति के पहिए चलते हैं, हवाई अड्डे के साथ रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।
नए कृषि कानूनों के खिलाफ चले एक बड़े आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा और अब सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपूर्व के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि 3 कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और ये 3 कृषि कानून, जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 व तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को, इन 3 को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी। और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने 3 बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है।
वहीं भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के किसानों की आय दुगनी करने के वादे पर सवाल उठाया और कहा,
भारत के प्रधानमंत्री ने ये कह रखा कि 1 जनवरी से फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो हम भी वो भी बुझ जाएंगे कि भाई कैसे दुगनी होगी, क्या क्या सवाल, ये हमारे सवाल है। अभी और जो मामले हैं जब वे पूरे हो जाएंगे, जब खत्म करेंगे, 27 तारीख की हमारी मीटिंग है उस पर हम अगला निर्णय लेंगे। अभी 29 तारीख तक का हमारा है कि 29 तारीख तक हमारा जो मार्च है वो होगा, 29 तारीख के बाद के क्या हमारे प्रोग्राम होंगे वो 27 तारीख में तय करेंगे।
अब सुनते हैं डॉलर का हाल। आज यानी गुरुवार को एक खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.73 रुपए और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 72 सेंट्स थी। अब खबरें खेल जगत से। टी20 सीरीज के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि इस दौरे पर न्यूजीलैंड की टीम भारत के साथ दो टेस्ट मैच खेलेगी, लेकिन भारत की तरफ से कुछ बड़े खिलाड़ियों के नाम इस सीरीज में शामिल नहीं हैं। आपको बता दें कि इस सीरीज के लिए कप्तान विराट कोहली ने नाम वापस ले लिया था, वहीं केएल राहुल चोट के चलते टीम से बाहर हैं। इसी के साथ रोहित शर्मा और ऋषभ पंत भी पहला टेस्ट नहीं खेल रहे हैं। अब लेते हैं मौसम की जानकारी। बात करते हैं कल यानी शुक्रवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल की। शुरुआत करते हैं पर्थ से, जहां आसमान साफ रहेगा। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में कल आंशिक बादल रहेंगे। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में कल बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न के बाद देश की राजधानी कैनबरा की, जहां बारिश होने की संभावना रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं सिडनी की, जहां कल बारिश की संभावना रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में कल बारिश की संभावना रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में कल बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस। अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। यहां का तापमान रहेगा अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको बता देते हैं, www.sbs.com.au/hindi।